हरे कृष्णा। तो आज के इस प्रेरणा महोत्सव में, इस प्रेरणा फेस्टिवल में सभी युवा भक्तों का मैं स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है ये ओवरव्यू ऑफ भगवद गीता। तो भगवद गीता के पूरे अध्याय में 700 श्लोक आते हैं और इन 700 श्लोकों को एक घंटे में बोलना, भगवान ने बोला था, अर्जुन ने सुना था। लेकिन हम सब इस कलयुग में है तो एक घंटे के अंदर इन 700 श्लोकों का ओवरव्यू देना बहुत कठिन है। और स्पेशली उसके लिए जिसने उस रस को चाखा है, मतलब जिसने डीप में जाके अगर उस गीता का अध्ययन किया है, उस रस का आस्वादन किया है, उसके लिए ओवरव्यू यानी क्या है। जैसे मेरे मन में एक उदाहरण आता है कि जैसे एक होता है आम रस, एक होता है उस आम का छिलका। तो ओवरव्यू ये छिलके के समान है और एक्चुअली टेस्ट किसको है, उस रस को, आम रस को। तो जिसने आम रस पिया है उसको अगर आप बोलेंगे कि आप थोड़ा छिलका थोड़ा टेस्ट करके देखो ना, तो वो बोलेगा कि अरे इसमें तो कोई टेस्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने आम रस चखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गीता का बहुत ज्ञान है या मैंने इसका आस्वादन किया है। जैसे आम रस चकने में परिश्रम कुछ है क्या? कुछ परिश्रम नहीं है। क्रेडिट किसको देना चाहिए? जिसने उस आमरस को बनाया है। चकने में क्या जाता है? हम पीते हैं, पीने में क्या जाता है? बनाने वाले को क्रेडिट जाता है। वैसे इस गीता के 700 श्लोकों के ऊपर हमारे आचार्यों ने उनको टिप्पणी दे दे के अपने मनोभाव को स्पष्ट करते हुए इस पूरे तत्व ज्ञान को एक रस की तरह बनाया है और वो हमें दिया है। तो हमने उसको चखा है तो क्रेडिट आचार्यों को जाता है, हमें नहीं। फिर भी मैं प्रयास करूंगा, ये मेरे लिए बहुत ही कठिन है एक घंटे में इनका देना, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि गीता के, भगवद गीता का कोई एक भी विषय मतलब इस ओवरव्यू में छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसा करके मैंने मेरी जो भी कुछ बुद्धि और भगवान की कृपा के द्वारा, गुरुदेव की कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा, वैष्णव की कृपा के द्वारा जो कुछ भी मुझे समझ में आया मैं बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूं। तो गीता को ऐसे कहा है, सर्व उपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन। सभी उपनिषद जितने भी शास्त्र हैं उनकी तुलना गाय से की जाती है और गाय का सबसे, मतलब गाय बोले तो दूध। तो सभी उपनिषदों का सार है गीतामृत। और गाय से अगर दूध निकलवाना हो तो गाय के सामने अगर बछड़ा छोड़ देते तो गाय अपने आप दूध देती है। वैसे यहां पे बछड़े का रोल कौन निभा रहा है? अर्जुन। इसलिए अर्जुन कहा गया पार्थ वत्स, जो वत्स है बछड़ा है वो अर्जुन के रूप में है। और बछड़ा कितना दूध पीता है? उसका पेट भरने के बाद दूध किसको जाता है? दूध जाता है सभी आम जनता को। तो वैसे यहां पे भगवान अर्जुन को निमित्त बना के सभी उपनिषदों का, सभी शास्त्रों का सार अर्जुन को माध्यम बनाते हुए भगवान हमें दे रहे हैं। और इसको स्पष्ट किया जा रहा है पहले अध्याय में ही, जहां पे ये भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन के लिए नहीं था, वो सभी जो भौतिक जगत के जीव है उनके लिए था। तो संजय अर्जुन को गुड़ाकेश नाम से बोलते हैं कि अर्जुन कौन है? गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश यानी जिसने अज्ञान और निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त की है। तो जो व्यक्ति पूर्ण रूप से ज्ञानी है वो भ्रम में कैसे जा सकता है? वो अज्ञान के जो लक्षण है वो कैसे प्रकट कर सकता है? ये नामुमकिन है, ये अशक्य है। फिर भी यहां पे अर्जुन बोल रहा है कि मैं पूर्ण रूप से भ्रमित हूं। और क्या बोल रहा है? कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे कृष्ण, मैं पूर्ण रूप से मेरी दुर्बलता के कारण, मेरा स्वभाव दुर्बल होने के कारण मैं भ्रमित हो चुका हूं, और मैं पृच्छामि त्वाम, मैं आपको पूछ रहा हूं कि मुझे कुछ तो बताओ ताकि मैं इस भ्रम से बाहर आ सकूं। देखो जो गुड़ाकेश है, जिसने पूर्ण रूप से, जो पूर्ण रूप से ज्ञानी है, जिसको पूरा तत्व ज्ञान पता है, जो जिसने अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त की है, वो अज्ञान के यहां पे लक्षण प्रकट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा है। तो अर्जुन को माध्यम बनाते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश हमें दे रहे हैं, इसलिए यहां पे अर्जुन बोल रहा है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरी बुद्धि पूर्ण रूप से ब्रह्म में चली गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृष्ण मुझे कुछ तो बताओ, आप मुझे इस मोह से, इस अज्ञान से बाहर निकालो। तो कृष्ण कहते, अरे आप तो मेरे मित्र हो। तो अर्जुन, नहीं नहीं नहीं, शिष्यस्ते हम, मैं आपका, अभी से मैं आपका शिष्य बन गया हूं, कृपया करके मेरा स्वीकार करो, आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूं, मैं भूल गया हूं कि आप मेरे मित्र है, अभी मैं आपका शिष्य हूं और मैं, आप मेरे गुरु हो, तो कृपया करके मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जो यश श्रेय शात निश्चितम ब्रूहित तन में, मैं आपको पूछ रहा हूं, कृपया करके मुझे श्रेयस्कर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दीजिए ताकि मैं इस अज्ञान से बाहर आ सकूं। और इसके बीच में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता के उपदेश बताते हैं, और ये सभी उपदेश सुनने के बाद अर्जुन बोलता है, नष्टमोहम स्मृतिर्लब्धात् त्वत्प्रसादात् मे अच्युता। हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरा मोह पूर्ण रूप से नष्ट हुआ है, जिस अज्ञान से, जिस अज्ञान के वजह से मैं भ्रम में गया था, वो भ्रम पूर्ण रूप से निकल गया है। स्थितोस्मिगत संदेह, मैं अभी स्थित हूं, मेरे संदेह नष्ट हो चुके हैं। करिष्य वचनम, तो मुझे बताओ कि मैं अब क्या करूं। तो जहां पे शुरुआत में अर्जुन भ्रम में गया है और भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन भ्रम से बाहर आया है, इनके बीच में पूरा ओवरव्यू है। इनके बीच में हमें क्या ऐसा बताया अर्जुन को, ऐसा क्या बताया कि जो भ्रम में चला गया था, भ्रम से बाहर आया है, बोल रहा है करिष्य वचनम, तो मैं अभी, आप जो कुछ भी उपदेश देंगे, जो कुछ भी आज्ञा देंगे, सभी आज्ञाओं को पालन करने के लिए मैं तैयार हूं। तो यहां से हमें समझ में आता है, जो गुड़ाकेश है, जो जिसने अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त की है, वो भगवान का एक प्रतिनिधि के माध्यम से, निमित्त मात्र हमारे प्रतिनिधि है, और भगवान उनको निमित्त बना के इस गीता का पूरा ज्ञान वो हमें दे रहे अर्जुन के माध्यम से। तो इसलिए पहले हम समझेंगे व्हाट इज भगवद गीता, ये भगवद गीता है क्या। तो भगवद गीता ये है, भगवान ने एक गाया हुआ गीत है, इसलिए इसको कहा था भगवत गीता, यानी भगवान ने अपने मुख से, मुख कमलों से एक गीत गाया है, उसको कहते हैं भगवद गीता। और क्यों गाया है, क्योंकि, और किसके लिए गाया है, जो भी जीव भगवान से बिछड़ने के बाद, हम और भगवान एक साथ रहते थे भगवत धाम में, लेकिन हमने वहां से विद्रोह करने के बाद हम यहां इस भौतिक जगत में आए हैं। तो इन बिछड़े हुए जीवों को, क्योंकि भगवान अपने जीव, अपने पुत्र के ऊपर, जैसे एक पिता अपने पुत्र के ऊपर प्रेम करता है, वैसे भगवान सभी जीवों के ऊपर प्रेम करते हैं। तो इन बिछड़े हुए जीवों को वापस लाने के लिए भगवान की जो पुकार है, भगवान की एक पुकार है, जो करुणा के वश भगवान पुकार रहे हैं जीव को, वो है गीत, उसको कहा जाता है भगवद गीता। यह है भगवद गीता। तो व्हाट इज भगवद गीता, भगवद गीता भगवान की पुकार है, भगवान पुकार रहे, भगवान बुला रहे हैं सभी जीवों को, भगवान अपने पास बुला रहे हैं, यह है भगवद गीता। तो इस गीत को जानने का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द मेथड टू अप्रोच, हम इस गीत को कैसे अप्रोच कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं। तो भगवान बोलते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति निज्ञानी ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। इस गीत को अगर समझना है, इस भगवान की पुकार को अगर समझना है, भगवान की करुणा को, भगवान की भावना को अगर समझना है, तो अर्जुन एक विधि है। और विधि क्या है? तद विधि प्रणिपात। आपको प्रणिपात करना पड़ेगा। प्रणिपात यानी शरणागति। आपको परिप्रश्न करना पड़ेगा, आपको जिज्ञासा प्रकट करनी पड़ेगी। और सेवया, आपको सेवा करनी पड़ेगी। अर्जुन बोलते हैं किसकी, किसको शरणागत हूं, किसको जिज्ञासा करूं, किसकी सेवा करूं? तो भगवान बोलते तत्वदर्शी। जिसने इस तत्व को जाना है, जिसने इस गीत को जाना है, जिसने इस पुकार को सुना है, जिसने इस भगवद गीता को जाना है, ऐसे तत्वदर्शी पुरुष से अगर आप सुनोगे, उसको अप्रोच करोगे, उसके पास जाओगे, उसको शरणागत होगे, उसको जिज्ञासा करोगे, उसको प्रश्न करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, दिस इज द मेथड टू अप्रोच भगवद गीता। ये है पद्धति, तद विधि। भगवान अपने खुद इस विधि को बता रहे तो हमने भगवद गीता देखा, हमने प्रोसेस देखा, अभी हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड भगवद गीता। पात्रता देखनी पड़ेगी। गीता तो गीत है, प्रोसेस क्या है? हमें तत्वदर्शी पुरुष, जिसने इस तत्व को जाना है, जिसने इस गीत को जाना है, उसकी शरणागति, उसको उसको उसकी सेवा करनी है। लेकिन पात्रता क्या होनी चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन अश्रद्ध धाना पुरुष धर्मस्य अश्य परंतप। जिसको इस गीत को जानना है, जिसको इस भगवद गीता को जानना है, उसके पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसको समझने के लिए क्वालिफिकेशन है, इसका अनुभव करने के लिए क्वालिफिकेशन है। तो भगवान कहते हैं अगर भगवद गीता को आपको जानना है तो इसका क्वालिफिकेशन है आपके पास श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपको यह श्रद्धा का अधिकार है, आपका अधिकार क्या है, आपकी पात्रता क्या है इसको समझने के लिए, अगर आपके पास श्रद्धा है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, गीता का ज्ञान जो है सही ज्ञान है, और जिस गुरु को पास मैंने गया हूं, एक गुरु के ऊपर मेरी पूर्ण श्रद्धा है, अगर ये श्रद्धा आपके पास है तो इस ज्ञान को आप जान सकते हो। लेकिन इसको अनुभव कैसे कर सकते हैं? जानना अलग है, अनुभव करना अलग है। तो भगवान कहते हैं श्रद्धा से आप इसको जान सकते हो, लेकिन अगर आप द्वेष से मुक्त होंगे, आप अगर अनसूये वे हो, इदम तुते घुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूये वे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष अशुभात। हे अर्जुन, इस ज्ञान का अगर आपको अनुभव करना है तो आपको इस मत्सर से मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए यहां पे भगवान दो पात्रता बता रहे हैं। एक है इसको जानना, अगर आपके पास श्रद्धा है आप इसको जान सकते हो, अगर आप मत्सर से रहित हो तो इसका आप अनुभव कर सकते हो। मतलब श्रद्धा मिलने के बाद हम इस श्रद्धा के ऊपर जब चलते हैं ना, चलना यानी जब इन श्रद्धा का हम पालन करते हैं तो हमारे हृदय का द्वेष निकल जाता है और हम इस भगवद गीता का अनुभव कर सकते हैं, इस गीत का अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पे व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड, टू क्वालिफिकेशन, वन इज श्रद्धा, सेकंड इज अनसूयवे, मत्सर रहित होना। ठीक है, तो अगर बोलेगा कि यहां पे कोई युवक होंगे, बोलेंगे कि अरे हमारे पास श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर हम कैसे समझेंगे? तो डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, इसको आप अभी भी सुनोगे तो श्रद्धा मिल जाएगी। क्योंकि भगवान बोलते हैं श्रद्धा को क्रिएट कैसे किया जाता है, जब कोई भक्तों के बीच बैठते हुए इस कथा का ज्ञान सुनता है तो वो व्यक्ति श्रद्धा को प्राप्त कर सकता है। तो श्रद्धा नहीं है तो इसको सुनने के बाद आपके अंदर निश्चित रूप से श्रद्धा आ जाएंगी। तो इसको आप जानोगे, इसके ऊपर आप चलोगे तो निश्चित रूप से आप मत्सर रहित हो जाओगे, इसका आप अनुभव कर सकते हो। तो डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड, श्रद्धा और मत्सर से रहित होना। ठीक है, तो अभी हम भगवद गीता का ओवरव्यू क्या है वो देखेंगे। तो भगवद गीता में देर आर थ्री काइंड्स ऑफ नॉलेज, तीन प्रकार का ज्ञान दिया गया है। पूरा भगवद गीता में तीन प्रकार का ज्ञान है। एक है गुह्य ज्ञान, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। दूसरा है गुह्यतर ज्ञान, इसको कहते हैं मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तीसरा है गुह्यतमम ज्ञान, उसको कहते हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो तीन प्रकार का ज्ञान है, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतमम, कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो अभी हम देखेंगे ये गुह्य ज्ञान क्या है। तो ऐसा कहा जाता है ये गुह्य ज्ञान यानी शरीर और आत्मा के बारे में जो भगवान भगवद गीता के अंदर जो ज्ञान दे रहे हैं इसको कहते हैं गुह्य ज्ञान। और इस ज्ञान में क्या बताया गया है, शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और इस शरीर और आत्मा की जो संकल्पना है इसको समझाने के लिए भगवान अलग अलग श्लोकों से अर्जुन को बता रहे कैसे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। और भगवान बोलते देहिनोस्मिन्यता देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, देहिनो, जिसने इस देह को धारण किया है, जो आत्मा इस देह के अंदर है, ये क्या करता है, देहिनो स्मिन्यता देह कौमारम, ये देहधारी जीव आत्मा ये शाश्वत है, इसमें कोई बदल नहीं, इसमें कोई विकार नहीं आता, विकार शरीर में आता है। शरीर जो बाल अवस्था में है यही शरीर कुमार अवस्था में जाता है, आत्मा वही रहती है, आत्मा वही है, उसमें कोई विकार नहीं, शरीर में विकार आया, शरीर बदल रहा है। तो बालपन से शरीर कुमार अवस्था तक जा रहा है, कुमार अवस्था से शरीर युवा अवस्था में जा रहा है, युवा अवस्था से शरीर जरा अवस्था तक जा रहा है, बूढ़ा अवस्था तक जा रहा है, और बूढ़ापे के बाद तथा देहांतर प्राप्ति, आत्मा वही है, आत्मा में कोई बदलाव नहीं, आत्मा शाश्वत है, शरीर बदल रहा है अर्जुन। तो तथा देहांतर प्राप्ति, इस मृत इस जरा शरीर से, इस बूढ़े शरीर से आत्मा दूसरे शरीर में स्थलांतरित की जाती है। तो आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, शरीर नष्ट होता है, हे अर्जुन जानो। और भगवान बोल रहे हैं न जायते, इस आत्मा को जन्म नहीं है, न म्रियते, इस आत्मा को मृत्यु नहीं है, नायम भूतवा भवितवा न भूया। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना भूत में, मतलब भूतकाल में कभी जन्म हुआ था, न वर्तमान में हो रहा है, न भविष्य में होगा, और न हन्यते हन्य माने शरीरे। हे अर्जुन, इस शरीर का नाश होने के बाद भी इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। तो गुह्य ज्ञान में भगवान शरीर और आत्मा के बारे में बता रहे, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। तो इसको हम कंक्लूजन में कैसे देखें कि इस गुह्य ज्ञान क्यों दे रहे भगवान अर्जुन को। तो इस गुह्य ज्ञान का निष्कर्ष यह है कि हम भगवान के अंश है, और जब आत्मा इस शरीर के, शरीर का आत्मा को जब स्पर्श होता है और आत्मा शरीर से आसक्त होता है, तो ये आत्मा इस भौतिक जगत में आने के बाद मनसष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी करिष्यति, वो इस भौतिक जगत में संघर्ष करता है। तो गुह्य ज्ञान बताने के बाद भगवान अर्जुन को बता रहे कि अर्जुन, जो भी आत्मा, जो भी जीव इस जगत में आता है, वो जीव इस जगत में संघर्ष करता है। और कैसा संघर्ष है, जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। संघर्ष क्या है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो जन्म मृत्यु के चक्र में, मतलब जीवन जीने के लिए, वो अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। जैसे हम आज का परिस्थिति देख रहे हैं, आज हम किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो गुह्य ज्ञान हमें यह बताता है कि हम इस भौतिक जगत में है, जब भगवान से बिछड़ के यहां पे आए हैं और शरीर के साथ हमने संबंध को प्रस्थापित किया है, और इसके कारण इतनी सुविधा होने के बाद भी मनसष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे मछली को पानी के बाहर निकालने के बाद इस मछली को सभी सुविधा हम देते हैं, उसको रहने के लिए घर देते हैं, घूमने के लिए गाड़ी देते हैं, धन देते हैं, खाने के लिए अलग अलग वैरायटीज ऑफ खाना देते हैं, इतना मिलने के बाद क्या मछली खुश हो सकती है, नहीं। क्यों? क्योंकि उसका स्थान ये नहीं है, उसका स्थान है पानी के अंदर, वैसे ही इस भौतिक जगत में जब जीव शरीर के साथ अपना संबंध बनाता है, इसका मतलब है वो पानी के बाहर आया है, वो पानी का मछली है, पानी का प्राणी है, वो बाहर आया है। जैसे इस शरीर के साथ संबंध प्रस्थापित करता है, मन षष्ठानि इंद्रियानि, मन और इंद्रियों के साथ अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, और यह संघर्ष पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु, बार बार बीमारी बार बार जरा, इसमें वो संघर्ष करता रहे, तो यह है गुह्य ज्ञान। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या भगवद गीता में कोई सॉल्यूशन है इस संघर्ष बाहर निकालने के लिए? तो हा, कौन सा दिया है सॉल्यूशन, क्या पर्याय है? तो इसलिए तो भगवान गुह्य तर्क ज्ञान दे रहे ना। तो गुह्य तर्क ज्ञान क्या है? ये जो मोर कॉन्फिडेंशियल है, पहले तो हमने देखा कि कॉन्फिडेंशियल गुह्य, इसके बाद में गुह्य तर यानी मोर कॉन्फिडेंशियल। ये क्या है? जो व्यक्ति इस गुह्यतर ज्ञान को जानता है वो व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलता है, क्योंकि गुह्य ज्ञान हमें बताता है कि जगत में हम फंसे हुए हैं, हम भगवान से बिछड़ने के बाद यहां पे आके हम फंस गए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंस गए हैं। तो इससे अगर बाहर निकलना है तो हमें गुह्यतर ज्ञान को जानना है, और वो ज्ञान क्या है? भगवान अपने खुद के बारे में ज्ञान दे रहे। तो शरीर और आत्मा के बारे में जो ज्ञान है उसको गुह्य ज्ञान कहा जाता है, और भगवान अपने खुद के बारे में जो ज्ञान देते हैं उसको कहा है गुह्यतर ज्ञान, मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और इसमें भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, अगर आपको इस भौतिक जगत के संघर्ष से अगर मुक्त होना है तो मेरे जन्म और कर्म को आपको जानना पड़ेगा, ये दिव्य है। तो भगवान अपने खुद के बारे में जो ज्ञान दे रहे हैं इसको कहा गया है गुह्यतर ज्ञान। क्यों? क्योंकि हमें इस भौतिक जगत के संघर्ष से बाहर निकलना है। तो उस गुह्यतर ज्ञान में भगवान अपने बारे में बता रहे। तो भगवान इस भौतिक जगत में दो प्रकार की लीला करते हैं, इसके बारे में इस गुह्यतर ज्ञान में बताते हैं। दो प्रकार की लीला है, कौन सी लीला है? भगवान अपने बहिरंगा शक्ति के साथ एक लीला करते हैं, और भगवान अंतरंगा शक्ति के साथ एक लीला करते हैं। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के साथ जो लीला है वो क्या है? भगवान जब जीव इस जगत में आता है तो इस जीव के पालन पोषण के लिए भगवान जिस प्रकृति का निर्माण करते हैं, इस प्रकृति के द्वारा भगवान सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। इस प्रकृति में सब जगह पे भगवान अपने को व्याप्त कर देते, इसलिए भगवान बोलते मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। भगवान अव्यक्त रूप से इस भौतिक जगत में पूर्ण रूप से व्याप्त है, किस लिए? सभी जीवों का पालन पोषण करने के लिए। इसको ही विराट रूप कहा जाता है, इसको ही परमात्मा फीचर कहा जाता है। भगवान परमात्मा के रूप में कण कण में बैठे हैं, कण कण में, चर अचर जो कोई भी चीज इस जगत में दिख रही है, बिना परमात्मा उसका अस्तित्व नहीं है। तो जो परमात्मा की जो लीला है इसको कहा जाता है भगवान की अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ लीला। और इसमें भगवान बताते हैं कि जैसे सूत्रे मणिगणायु, मैं दिखता नहीं हूं, जैसे भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे कोई मणियों का अगर कोई माला है तो उस धागे में हर एक मणि को गूंथा जाता है, तो सभी मणि इकट्ठा है किसके कारण? क्योंकि अंदर धागा है, धागा दिखता नहीं है, लेकिन धागे को अगर तोड़ देते हैं तो मणि बिखर सकते हैं। वैसे भगवान हमें यहां पे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन भगवान उस धागे के समान है, सूत्रे मणिगणा इव, अगर धागा निकल गया मणि का अस्तित्व नहीं है। वैसे इस भौतिक जगत में अगर परमात्मा नहीं है तो इस भौतिक जगत का फिर अस्तित्व नहीं है, इस भौतिक जगत में कोई भी चीज का अस्तित्व नहीं। जैसे हम अगर उदाहरण देंगे कि हमें रोज खाने के लिए हमें शक्कर लगती, शुगर, तो शुगर का जो अस्तित्व है, क्योंकि उसमें परमात्मा बैठे इसलिए हमें शक्कर स्वीट लगती है। अगर परमात्मा अगर शुगर में नहीं रहेगा तो हमें शुगर का टेस्ट नहीं लगेगा। अगर परमात्मा उस पानी में नहीं है, भगवान बोलते रसोम हम सिकौनते, मैं जल के अंदर हूं इसलिए जल को टेस्ट है। तो समझ के लीजिए हमारे पालन पोषण के लिए भगवान बहिरंगा शक्ति के साथ लीला करते हुए परमात्मा के रूप में कण कण में हमारे पालन पोषण के लिए बैठे हैं। यह है भगवान की बहिरंगा शक्ति के साथ लीला, और दूसरी है भगवान की अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ लीला। तो उसमें कहा जाता है जब इस भौतिक जगत में जहां कहा भी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिदानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जहां जहां कहा भी जब अधर्म होता है, धर्म को ग्लानि आती है और अधर्म का प्रचार होता है, तो अभिधानाम अधर्म से उस अधर्म को रूट से उखाड़ने के लिए भगवान वराह नरसिंह राम कृष्ण बलराम इन अलग अलग रूप में जो भगवान अवतरित होते हैं, ये है भगवान की अंतरंगा शक्ति के साथ लीला। यह अवतरण है भगवान का। तो बहिरंगा शक्ति के साथ भगवान का अवतरण क्या है? परमात्मा के रूप में, विराट रूप में। और भगवान अंतरंगा शक्ति के साथ जब लीला करते तो अलग अलग रूप में भगवान अवतरित होते और आके क्या करते, जिस अधर्म को उन्होंने उखाड़ दिया है, जहां अधर्म का प्राबल्य, धर्म को ग्लानि आई है, उस अधर्म को भगवान ने उखाड़ दिया है, तो उस धर्म संस्थापनार्थ उस धर्म को स्थापना करते हैं। और क्या क्या करते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो साधुओं का रक्षण करते, भक्त की रक्षा करते हैं, और जो आसुरी लोग हैं उनको नष्ट कर देते हैं। तो ये है भगवान जब अंतरंगा शक्ति के साथ मिलकर अलग अलग प्रकार का जो अवतार लेते हैं, तो अवतार का प्रयोजन क्या है? तो अपने भक्त की रक्षा करना और जो असुर लोग हैं उनको नष्ट करना, और धर्म जिस अधर्म की वजह से धर्म को ग्लानि आई है उस अधर्म को उखाड़ देते और धर्म की स्थापना कर दे। इसलिए भगवान अंतरंगा शक्ति के साथ आते हुए यहां पे लीला करते। इसको कहा गया है गुह्य तर ज्ञान। जो कोई व्यक्ति इस ज्ञान को समझता है, जो कोई व्यक्ति भगवान के बारे में समझता है, इस गुह्यतर ज्ञान को समझता है, वो व्यक्ति इस भौतिक जगत के संघर्ष से मुक्त होता है। यही तो हमने देखा ना, जन्म कर्मच में दिव्यम। हम कैसे समझेंगे भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है? जब भगवान को हम जानेंगे तभी ना। तो भगवान को जानने के बाद, इस गुह्यतर ज्ञान को जानने के बाद, जो गुह्य ज्ञान हमें बताता है कि आत्मा शरीर के साथ रहने के कारण इस भौतिक जगत में बद्ध है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, इसको अगर बाहर पढ़ना है तो उसको गुह्यतर ज्ञान को समझना है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस गुह्यतर ज्ञान को कैसे समझे? तो भगवान बोलते इसको समझने के लिए गुह्यतमम ज्ञान होना चाहिए। गुह्यतमम यानी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोर सीक्रेट और ओपन सीक्रेट। दिखने में यह गुह्य है, दिखने में यह ओपन है, लेकिन इसका चावी है, इसका चावी है यह ऐसे। इसलिए इसको कहा है यह ओपन सीक्रेट है, सीक्रेट है लेकिन ओपन है, ऐसे ही नहीं समझेगा। और इसको कहा है गुह्यतमम। गुह्यतमम यानी गुह्य, गुह्यतर ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है? गुह्यतमम ज्ञान। इसको कहा है भक्ति, मतलब भगवान से बढ़कर उनकी भक्ति है। इसलिए तो उसको कहा है ना मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। क्यों? क्योंकि मुझे अगर इस भौतिक संघर्ष से अगर मुक्त होना है तो मुझे भगवान को जानना है, लेकिन मैं भगवान को कैसे जान सकता हूं? उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है आप भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान सकते हो। इसलिए भगवान कहते भक्त्या माम अभी जानाती, भक्त्या तू अनन्य शक्य, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जो कोई व्यक्ति भक्ति के द्वारा मेरे जन्म और कर्म को दिव्य समझता है, इसने गुह्यतर ज्ञान को समझा है, वो व्यक्ति जो गुह्य ज्ञान के कारण, मतलब ये ज्ञान हमें बताता है कि आत्मा इस जगत में संघर्ष कर रही है मन और इंद्रियों के साथ, इस संघर्ष में मुक्त हो सकती है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है? यह गुह्यतमम। इसको कहा गया है भक्ति। और इसलिए भगवान भगवद गीता में भक्ति को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के रूप में बता रहे कि अर्जुन सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? गुह्यतमम। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतमम। गुड बेटर बेस्ट। और इस ज्ञान को बताने के लिए भगवान इस भक्ति के जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है इसके सात लक्षण बता रहे। एक है जैसे भगवान बोलते राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुकम कर्तुम अव्ययम। तो बता रहे कि इस भक्ति के ये जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है गुह्यतम ज्ञान है इसके सात लक्षण है अर्जुन। क्या है? पहला राज विद्या किंग ऑफ ऑल नॉलेज, ये सभी विद्याओं का राजा है। जितने भी इस भौतिक जगत में विद्या है इसमें कर्म आएगा ज्ञान आएगा योग आएगा या भौतिक, ये दुनिया पूरे भौतिक विद्याओं से भरा हुआ है। इन सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है अर्जुन? ये मोस्ट सीक्रेट नॉलेज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज गुह्यतम ज्ञान, ये भक्ति का ज्ञान, ये राज विद्या है किंग ऑफ ऑल नॉलेज, पहला लक्षण बताते। दूसरा राज गुह्यम, ये परम गोपनीय अर्जुन, ये बहुत ही सीक्रेट है इसकी, इसलिए इसको सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, ये परम गोपनीय है। तीसरा बता रहे भगवान पवित्रम इदम उत्तमम, ये सभी प्रकार के पाप को नष्ट करने वाला है, ना कि पाप को नष्ट करता है, पाप करने के प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देता है, इसलिए ये कैसा है पवित्रम इदम उत्तमम। चौथा लक्षण बता रहे प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्ष अवगमम यानी इसके दो अर्थ बताते, प्रत्यक्ष अवगमम यानी इसको प्रत्यक्ष रूप से हम इसका आचरण कर सकते हैं और आचरण करने के लिए बहुत ही कैसा है सुलभ है, सुलभ है। बाकी के जो मार्ग है ये क्लेशो अधिकतर तेषाम, भगवान करते ये सभी मार्ग क्लेशों से भरे हुए है, लेकिन ये भक्ति का जो मार्ग है प्रत्यक्ष अवगमम प्रत्यक्ष आचरण करने के लिए योग्य है और सुलभ है। और दूसरा अर्थ भगवान बताते प्रत्यक्ष अवगम यानी जब हम इस भक्ति के मार्ग को प्रत्यक्ष आचरण करते हैं प्रत्यक्ष पालन करते हैं अर्जुन हमें इसका अनुभव आता है। अनुभव क्या आता है कि मेरे हृदय के अनर्थ मेरी पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो रही है, मेरी भगवान के ऊपर श्रद्धा बढ़ रही है, मुझे भगवान की कथा में रुचि आ रही है, मुझे भगवान के प्रति आसक्ति हो रही है, मुझे भगवान से प्रेम हो रहा है, इसका हम अनुभव कर सकते हैं अर्जुन कब? जब इसका प्रत्यक्ष रूप से आचरण करेंगे, और आचरण करने के लिए बहुत ही सुलभ है, यह है प्रत्यक्ष अवगमन। पांचवा चीज बोले धर्म्यम, धर्म्यम यानी यह सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसके अलावा इस जगत में सबसे बड़ा धर्म कोई नहीं है। और इस प्रश्न को 5000 साल पहले ऋषियों ने उठाया था नैमिषारण्य में, जो शौनकादि ऋषि इकट्ठा हुए थे 88,000 कम नहीं 88,000 ऋषि एक जगह पे बैठे और सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं कि सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है। तो 5000 साल पहले सूत गोस्वामी अनाउंसमेंट कर रहे सबसे श्रेष्ठ धर्म है सवे पुंसा परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षजे अहेतो की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे श्रेष्ठ धर्म यह है। यहां पे भगवान वही कह रहे हैं कि धर्म्यम सबसे धार्मिक एक्टिविटी अगर कुछ है तो भक्ति के है। और छठा बोल रहे सुसुकम कर्तुम, सुसुकम कर्तुम यानी ये सुखकारक है। सुखकारक यानी क्या है? बाकी के जो मार्ग है इसमें बहुत इंद्रिय निग्रह है, बहुत तपस्या है, वैराग्य से भरी हुई है, क्लेशों से भरी हुई है, इसमें आनंद नहीं मिलता है, लेकिन ये जो मार्ग है अर्जुन इसको जब हम पालन करते हैं तो ये सुसुकम है। सुसुकम यानी चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग रामनवमी नरसिंह चतुर्दशी जन्माष्टमी गौर पूर्णिमा नित्यांतर्दशी अभिषेक करते देखने मिलता है, कीर्तन देखने को मिलता है, प्रसाद महाप्रसाद चरणामृत तो ये क्या है? सुसुकम है, इसमें आनंद ही आनंद है, इसको करने के लिए क्लेश नहीं, इसमें आनंद ही आनंद है। तो ये भगवान छठा और सातवां बोले अव्ययम, अव्ययम यानी ये मार्ग अविनाशी है। इस मार्ग में चलने वाला साधक अगर यशस्वी नहीं होता है, समझो 50% उसकी भक्ति हुई है तो अगले जन्म में वो 51 से चालू करेगा, इस मार्ग में नाश नहीं है। इस प्रकार भगवान इस गुह्यतमम ज्ञान के सात लक्षण बता रहे, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुकम कर्तुम अव्ययम। और इसके बीच में यही इस गुह्यतमम ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए भगवान चतुश्लोकी गीता बता रहे। चतुश्लोकी गीता यानी दिस इज हार्ट ऑफ गीता, मतलब गीता क्या है, भगवद गीता क्या है, वो गीत क्या है, भगवान ने जो जीव के लिए जो पुकार है वो क्या है, भगवान की जो पुकार वो क्या है, ये चतुश्लोकी गीता में समझती है। तो यहां पे भगवान पहले श्लोक में बता रहे अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुदा भाव समन्विता। तो भगवान इस चतुश्लोकी गीता के पहले श्लोक में, दसवें अध्याय में आता है, तो यहां पे बता रहे संबंध के बारे में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्व प्रवर्तते, भगवान सबके प्रभु है, हमें समझ में आता है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो भगवान मेरे स्वामी है, वो मेरे दाता है, वो मेरे पिता है, और मत्ता सर्व प्रवर्तित मतलब ही इज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग, जो कुछ भी हमें मिलता है उनके सोर्स कौन है, उनके स्रोत कौन है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो ये समझ में आता है, जैसे अगर कोई इंजीनियर हो, अगर वो किसी कंपनी में, एक बहुत बड़ा कंपनी है, और उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है, और जब उसका इंटरव्यू चला, मतलब इंटरव्यू चालू रहता है, उस समय उसको पता चलता है कि इस कंपनी का जो मेन जो मालिक है ना, वो मेरा पिता है, तो क्या होगा? तो बोलेगा कि आप इधर बैठो, मैं उधर बैठता हूं बोलेगा ना क्यों? उसको संबंध पता चला, क्या, जिस कंपनी में मैं इंटरव्यू के लिए आया हूं, ये कंपनी का जो मालिक है वो मेरा पिता है, क्योंकि वो पिता को भूल गया है। तो इसलिए जब हमारा भगवान के साथ संबंध समझता है कि भगवान मेरे पिता है, भगवान मतलब अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका स्वामी हूं, मत्ता सर्व प्रवर्तते, आई एम सोर्स ऑफ एवरीथिंग, मुझसे सब कुछ आता है, जो कुछ भी हमें मिलता है उसके स्रोत है भगवान श्री कृष्ण, इति मत्वा, ये जिसको समझता है वो व्यक्ति क्या करता है, इति मत्वा भजन्ते माम, भगवान बोलता है वो मेरे साथ संबंध बनाने का प्रयास करता है। और जो व्यक्ति भगवान के साथ संबंध बनाने का प्रयास करता है उसको कहा जाता है बुधा, बुधा यानी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि जो भगवान के साथ संबंध बना रहा है। इसलिए इस चतुर्श्लोकी गीता में पहला जो श्लोक है इसको कहा है संबंध ज्ञान, हमें संबंध पता चलता है, कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं इनका दास हूं, मैं उनका अंश हूं, वो मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूं, ये समझता है। तो जब वो चाहता है कि मुझे भगवान के साथ संबंध बनाना है, संबंध को प्रस्थापित करना है, तो अगले श्लोक में वो कैसे संबंध प्रस्थापित करता है, मच्चिता मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम कतयंत माम नित्य तुष्यंति च रमंति च। तो भगवान कहते हैं वो मेरे साथ कैसे संबंध प्रस्थापित करता है, उसको संबंध समझ में आया है, लेकिन प्रस्थापित करे कैसे, हाउ टू इस्टेब्लिश, उसको कैसे प्रस्थापित कर सकते हैं। तो भगवान कहते वो मेरा स्मरण करता है, मत चित्ता, उसका मन हमेशा मेरे स्मरण में लगता है, मत चित्ता मतगत प्राणा, भगवान बोलते वो मुझे समझता है कि भगवान उसके लिए प्राण है, मतगत प्राणा। और कैसे संबंध बनाता है, परस्परम, एक दूसरे के साथ बैठते हुए वो क्या करता है, बोधयंत परस्परम, भगवान के बारे में कतयंतस्य माम नित्य, भगवान की कथाओं में, भगवान के गुण में, भगवान के लीला में, उस लीलाओं की चर्चाओं में, परस्परम, एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए वो सम्मान, भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करता है। उस चर्चाओं में वो क्या करता है, तुष्यंति च रमंति च, वो रमन करता है, उसमें उसे संतुष्टि मिलती है। तो एक संबंध समझ में आया, संबंध को कैसे प्रस्थापित करना है, भगवान के बारे में बैठ के परस्परम होना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को हमारा प्राण समझना चाहिए, तो इससे हम भगवान से संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। और जब हमारा भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित होता है तो उसका फल क्या है, तो पहला है संबंध प्रस्थापित करने का जो प्रक्रिया, उसको अभिधेय कहा जाता है। और जब हमारा संबंध प्रस्थापित होता है तो भगवान का जो रेसिप्रोकेशन है, भगवान का जो आदान प्रदान है, इसको कहा जाता है प्रयोजन। और वो प्रयोजन क्या है, इसमें भगवान कहते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम, अगर व्यक्ति मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, इसको अगर तेषाम सतत युक्ता नाम, इसमें अगर सतत रूप से युक्त है मतलब उसने मेरे साथ संबंध प्रस्थापित किया है, भजताम प्रीतिपूर्वकम प्रेम से मेरे साथ वो संबंध बना रहा है, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको खुद बुद्धि देता हूं, उसको मैं प्रेरणा देता हूं, मैं खुद देता हूं, ददामि बुद्धि योगम तम, किसके लिए, एन माम उपयांति ते, वो मेरे पास चला आ सकता है, इसके लिए कैसे भगवान के पास हम चले जाएंगे, इसकी बुद्धि भगवान खुद देते हैं जब हम तेषाम सतत युक्ता नाम, किसमें, मच्छिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, तो भगवान खुद बुद्धि देते। तो कोई प्रश्न पूछेगा लेकिन अनर्थों के बारे में क्या, तो भगवान बोलते डरने की बात नहीं, मां सूचे डरो मत अर्जुन, इस अनर्थ का मैं क्या करता हूं, तेषाम एवानुकंपार्तम अहम अज्ञानजम तम नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। हे अर्जुन, अनर्थ का मैं क्या करता हूं, मैं खुद उस अनर्थ को निकाल देता हूं, कैसे, नाशयामि आत्मभावस्तो, उस नाश को, इस अज्ञान को, उस अंधकार को, उस अनर्थ को मैं खुद नष्ट करता हूं, कैसे, जैसे ज्ञान दीपेन भास्वता, जैसे अंधकार में अगर कोई दीप जलाया जाता है तो उस अंधकार नष्ट होता है, वैसे हृदय में मैं ज्ञान का दीप जलाकर उसके हृदय के सभी अनर्थ मैं खुद नष्ट करता हूं। तो यह है चतुश्लोकी गीता, इसमें भगवान के साथ संबंध समझता है, उस संबंध को कैसे प्रस्थापित करना है वो प्रक्रिया समझती है, जब संबंध होता है तो भगवान हमारे साथ क्या आदान प्रदान करते हैं, भगवान हमें बुद्धि देते हैं हम उनके पास कैसे जाएंगे, और अनर्थ के बारे में भगवान बोलते उन सभी अनर्थों को मैं खुद नष्ट करता हूं, यह है गुह्यतमम ज्ञान, यह है भक्ति का ज्ञान। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, गुह्य नहीं, गुह्यतर नहीं, अपने बारे में जो ज्ञान है वो भी नहीं बोल रहे, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है, गुह्यतम, भक्ति इज द टॉप मोस्ट नॉलेज, ये खुद भगवान बोल रहे। तो अगर भक्ति सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है तो भगवान भगवत गीता में अलग अलग प्रकार का ज्ञान क्यों दे रहे हैं, कर्म का ज्ञान है, योग का ज्ञान है, ध्यान का ज्ञान है, क्यों दे रहे इस प्रक्रिया को, ये प्रश्न है ना। अगर भक्ति सर्वश्रेष्ठ है तो पूरा भगवत गीता भक्ति से भरना चाहिए था, लेकिन ये अलग अलग ज्ञान क्यों दे रहे, कर्म ज्ञान, योग ज्ञान, ध्यान का ज्ञान क्यों दे रहे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अधिकार, हर एक का अधिकार अलग अलग होता है, तो जैसा उसका अधिकार वैसे ज्ञान को वो स्वीकार कर सकता है। इसलिए तीन प्रकार के ज्ञान बताए गए भगवद्गीता में, एक है कर्माधिकार, मतलब तीन प्रकार के अधिकारी, कर्माधिकारी, ज्ञानाधिकारी और भक्ति अधिकारी। कर्माधिकारी मतलब क्या, जो व्यक्ति जिसको पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति करनी है, जिसको इंद्रिय तृप्ति में मजा आता है, तो भगवान बोलते कर्म नहीं वो अधिकार, आपका अधिकार क्या है, कर्म करो, इसलिए कर्मयोग। इसलिए पहले छह अध्याय में भगवान कर्मयोग के बारे में बता रहे, आप कर्म करो, कर्म करो, कर्म, आपकी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है ना, ठीक है, आपका अधिकार क्या है, कर्म नहीं वो अधिकार, आपका अधिकार है कर्म करना, जिसको इंद्रिय तृप्ति करनी है उसका अधिकार है वो कर्माधिकारी है। लेकिन जब इंद्रिय तृप्ति करने के बाद वो पक जाता है, बोलते इसमें कुछ मजा ही नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए, तो भगवान कहते हैं आपको मुक्ति चाहिए, अभी आप ज्ञानाधिकारी हो। तो ज्ञानाधिकार मतलब क्या, जिसको मुक्ति अभिलाषी है, जिसको इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा है वो कर्माधिकारी, लेकिन जिसको मुक्ति की अभिलाष, मुझे जन्म मुक्ति के चक्र में आना ही नहीं, ये शरीर दुख मूल, ये शरीर बहुत दुखी है, कष्टी है, ये शरीर के कारण ही मुझे क्लेश होते, इस शरीर से मुझे मुक्त होना है, भगवान तो ज्ञानाधिकारी है। तो फिर अगर आपको ज्ञान का अधिकार चाहिए तो भगवान कहते हैं अगर आपका कर्म, आपका नियत कर्म अगर आप निष्काम भाव से करोगे तो आपका हृदय स्वच्छ होगा, और जब आपके हृदय के सभी इंप्रेशंस, सभी अनर्थ जब नष्ट हो जाएंगे, आपका हृदय पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएगा, आपका अधिकार बढ़ेगा, और आपका अधिकार क्या आएगा, आप ज्ञान के अधिकारी बनोगे, ज्ञान अधिकार, यानी उसका हृदय स्वच्छ है, उसकी अभिलाषा क्या है, मुझे मुक्त होना, इस भौतिक जगत से मुझे मुक्त होना है। इसलिए उस व्यक्ति के लिए भगवान अध्याय क्रमांक 13 से लेके अध्याय क्रमांक 17 तक ज्ञान दे रहे, इसको कहता है ज्ञान विभाग। पहला जो 1 से लेकर 6 तक कर्म विभाग है, 13 से लेकर 17 तक ज्ञान विभाग है। इसमें भगवान 3 प्रकार के कर्ताओं के बारे में बताते हैं, 3 टाइप्स ऑफ डूअर, कर्ता। एक है जीव, दूसरे ही प्रकृति, तीसरा है परमात्मा या भगवान। तो जीव है, इसको डिजायरिंग डूअर कहा गया है, प्रकृति को अकम्प्लिश डूअर कहा गया है, और जो परमात्मा या भगवान है उनको सैंक्शनिंग डूअर कहा गया है। इसलिए कभी जब जीव खुद को ही कर्ता समझता है तो उसको कहा है वो मिथ्याचार, ये वो क्या है, वो अहंकारी है। क्योंकि प्रकृते क्रियमानानि गुणकर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो जो व्यक्ति खुद को कर्ता समझ रहा है, यहां पे 3 प्रकार के कर्ताओं का ज्ञान दिया जा रहा है। एक है जीव जो खुद को पुरुष समझता है, उसको कहा गया यह नकली पुरुष है। नकली पुरुष क्यों है, क्योंकि खुद को कर्ता समझ रहा है, यह नकली पुरुष है। असली पुरुष कौन है, जो परमात्मा, जो सैंक्शनिंग डूअर है, जो सैंक्शन करते, हमें सिर्फ इच्छा करने की स्वतंत्रता है, सिर्फ हम इच्छा कर सकते, लेकिन इसको सैंक्शन कौन करता है, भगवान। इसलिए असली पुरुष वो है, लेकिन जीव जब खुद को पुरुष समझता है, भगवद्गीता कहती है नकली पुरुष है। नकली पुरुष क्या है, इसको इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, ये भोग करने की इच्छा कर रहा है, ये नकली है। भोग का अधिकार सिर्फ भगवान को है, जीव को नहीं है। इसलिए जब ये जीव इच्छा करता है तो भगवान उसको सैंक्शन भी करते हैं, लेकिन प्रकृति क्या करती है, पूर्ण रूप से उस इच्छा को पूर्ण करने का कार्य प्रकृति कहती है। इसलिए अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो 1% ही जीव करता है, सिर्फ इच्छा करता है बाजू हट जाता है, बाकी 98% प्रकृति उसको पूर्ण कर देती है। क्योंकि बिना प्रकृति उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती, और उस इच्छा को पूर्ण करने भगवान का सैंक्शन होना चाहिए। तो 3 प्रकार के कर्ताओं के बारे में इस ज्ञान अधिकार में भगवान 13 से लेकर 17 अध्याय तक बता रहे हैं। इसमें 3 गुणों के बारे में भी बताते हैं, सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। तो ये पूरा जो मृत्यु संसार सागर, ये पूरा जो भव सागर है, ये पूरा भव सागर ये 3 गुणों के आधिपत्य के नीचे है, और इनके बीच में ये जीव फंसा हुआ है। तो जो ज्ञान अधिकारी है ये इसको जानता है कि मैं इस जगत में, मुझे अगर फंसना नहीं है तो इस जगत में ये जगत कैसे चलता है इसके बारे में उसको पता है, इसलिए वो इच्छा नहीं करता है। उसको मुक्ति चाहिए ना, तो वो इच्छा नहीं करता। क्यों इच्छा नहीं करता है, क्योंकि निष्काम करते हुए कार्य करते उसका हृदय अभी स्वच्छ हुआ है, उस हृदय में अभी कोई भी इच्छा नहीं है, इसलिए वो ज्ञानाधिकारी के स्तर पे गया है और उसको इस जगत का भवबंधन अभी कुछ नहीं कर सकता, वो मुक्त हो चुका है, वो है ज्ञानाधिकार। तो कर्माधिकार जिसको इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, ज्ञानाधिकार जिसको मुक्ति की इच्छा है, उसे मुक्त होना है, और तीसरा है जिसको भगवान की भक्ति करना, उसको भक्ति अधिकार कहा है, जिसको भगवान की सेवा करनी है। ये 3 अधिकार के बारे में बताए। लेकिन भक्ति कैसी है, भक्ति 3 in 1 कैसे, तो कर्माधिकारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से करता है, तो भक्ति में आनंद भी है, हमारे इंद्रियों को आनंद मिलता है भक्ति करते समय, तो उसमें आनंद भी है। भक्ति में मुक्ति है क्या, हाँ, भक्ति हमें जन्म मुक्ति के चक्र से मुक्त कर देती है, तो भक्ति में मुक्ति भी है, और तीसरा है भक्ति में सेवा भी है। तो इसलिए अगर भगवान ने 3 प्रकार के अधिकार भी बताने के बाद भगवान बोल रहे हैं अगर भक्ति करोगे तो आपको ये 3 in 1 भक्ति में सब कुछ मिलेगा। कर्माधिकार जो इंद्रिय तृप्ति के लिए आप जा रहे हो, आपके इंद्रियों को यहां पे तृप्ति, क्योंकि सुसुखमय ना भक्ति, यहां आनंद देने वाली है, आपके इंद्रियों का आनंद है। चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग, फेस्टिवल होता है तो डांस करो, प्रसाद खाओ, चरणामृत ग्लास भर पियो तो यहां पर क्या है, सुसुखमय। लेकिन बाहर कैसा है, क्लेशकारक है, बाकी के जो मार्ग है क्लेशकारक है। इसलिए यहां पे अलग अलग अधिकार देने के बाद, क्योंकि यहां पे अलग अलग मार्ग बता रहे, भक्ति टॉप मोस्ट है, लेकिन अलग अलग मार्ग यहां पे भगवान बता रहे, क्यों, अधिकार के स्तर पे, कर्माधिकार, ज्ञान अधिकार और भक्ति अधिकार। लेकिन यहां पे भगवान बोलते हैं भक्ति अधिकारी सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्ति के लिए अधिकार क्या है, श्रद्धा। अगर किसके पास श्रद्धा है वो भक्ति के लिए अधिकारी है, अगर श्रद्धा नहीं है तो भक्त के संग में आओ, श्रद्धा वो बना देंगे, सिंपल है, भगवान वो श्रद्धा बना देंगे। तो श्रद्धा मिलेगी आप भक्ति के लिए अधिकार हो, और अगर भक्ति कर रहे हो तो इंद्रिय की तृप्ति यहां पे है, यहां आनंद है, यहां मुक्ति भी है, जन्म मृत्यु के सागर से मुक्त हो सकते हैं, और यहां भगवान की सेवा भी है, 3 in 1। इसलिए गीता, भगवत गीता का ओवरव्यू अगर हम देख रहे तो बार 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 भगवान हमें यहां पे ही घुमा के लेके आएंगे, टॉप मोस्ट योग, भक्ति इज द टॉप मोस्ट योग। बस तो 3 प्रकार के अधिकार बताने के बाद भी भगवान बोलते हैं क्या कि ये भक्ति अधिकार सर्वश्रेष्ठ है, श्रद्धा है तो आप अधिकारी हो, श्रद्धा नहीं है आप यहां पे आओ, भक्तों का संग करो, भक्तों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, श्रद्धा अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है 3 प्रकार के अधिकार। क्योंकि हमने प्रश्न पूछा था कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है तो अलग अलग मार्गों का भगवान इसमें क्यों उल्लेख कर रहे हैं, तो अलग अलग अधिकारों के ऊपर भगवान चर्चा कर रहे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अधिकार क्या है, भक्ति अधिकार। ठीक है, उसके बाद में भगवान बोल रहे कि जो देवताओं के जो भक्त है वो अल्पमेधसाम है, वो कम बुद्धि वाले हैं, और वो अविधि पूर्वक है, उसमें विधि नहीं है। क्यों विधि नहीं है, क्योंकि जो देवताओं के जो भक्त है उनमें जो श्रद्धा है वो देवता नहीं दे सकते, देवताओं में वो शक्ति नहीं है कि अपने उपासकों के अंदर श्रद्धा को क्रिएट करना, श्रद्धा को बनाना। तो भगवान बोलते हैं क्योंकि उनकी उनका विश्वास उस देवता, उनका आकर्षण उस देवता की तरफ है, इसलिए श्रद्धा मैं देता हूं। जब उस श्रद्धा से उस देवता की उपासना की जाती है, उस उपासकों को वो फल देने की शक्ति भी देवताओं में नहीं रहती है। तो भगवान बोलते हैं वो फल भी मैं देता हूं, इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धा मैं दे रहा हूं, फल मैं दे रहा हूं, तो ये लोग वहां क्यों जा रहे, मेरे पास क्यों नहीं आते। तो कभी कभी हमें लगता है कि भगवान की भक्ति यानी निस्वार्थ होती है, यहां कोई मांगना ही नहीं है, मांगना है तो देवताओं के पास चले जाओ। अरे नहीं बाबा, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार दी तीव्रे ने भक्ति योगे ने यजत पुरुष परम, आपकी इच्छा हो इच्छा नहीं है, आपको मुक्ति चाहिए नहीं चाहिए, जो कुछ भी है तीव्रे ने भक्ति योगे ने, आपके लिए एक ही दरवाजा खुला है, वो क्या है, भगवान के भक्ति का दरवाजा। इसलिए भगवान बोलते हैं जो कोई लोग मुझे छोड़ के अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं ये अविधि पूर्वक है, इनको अल्प मेधसाम कहा गया है, और इसके अलावा जो व्यक्ति निर्विशेष रूप में मुझे आकारी नहीं बोलते और ऐसे रूप में मेरी भक्ति करते वो तो अबुद्ध है, अबुद्ध यानी उसको बुद्धि नहीं है। देवताओं के भक्तों को थोड़ी तो बुद्धि है, लेकिन ये जो निराकार रूप में मेरी पूजा करते इनको तो बुद्धि ही नहीं है, जो अबुद्ध है, ऐसे भगवान बोलते। तो अलग अलग प्रकार का ज्ञान देते हुए भगवान इस भगवद्गीता में क्या बोल रहे, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है, भक्ति का ज्ञान। और कंक्लूजन में भगवान बोलते हैं 2 वर्स, भगवत गीता का कंक्लूजन 2 ही श्लोकों में देते हैं। 1 श्लोक में भगवान बोलते हैं मन मनाभव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, हे अर्जुन इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है, वो है भक्ति का। इसलिए मत मना, मेरे ऊपर आपके मन में मेरा चिंतन करो, भव मद भक्तो मेरा भक्त बनो, मद्याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। अगर ये आप करोगे, सिंपल है, भगवान में मन लगाना है, भगवान को नमस्कार करना है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान का भक्त बनना है, ये आप करोगे तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रति जाने सत्यम ते प्रति जाने, मैं प्रतिज्ञा लेकर कहता हूं, जैसे हम कहते ना मैं शपथ लेता हूं, वैसे भगवान कहते मैं प्रतिज्ञा लेता हूं अर्जुन कि वो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर, ये 4 चीज करेगा या 1 भी चीज करेगा, वो व्यक्ति मेरे पास निश्चित रूप से लौट कर आ सकता है। इसलिए तो भगवान ने गीत गाया है ना, हमने देखा व्हाट इज भगवत गीता, ये गीत गाया है, ये भगवान की पुकार है, किस लिए, जीव मेरे पास आए। इसलिए भगवान ने सोल्यूशन भी दे रहे, जो भक्ति करेगा वो व्यक्ति सही रूप से उसने वो गीत को सुना है, भगवान की पुकार को समझा है, और वो पुकार में भगवान बोलते प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है भक्ति, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये करोगे या 1 भी करोगे निश्चित रूप से आप मेरे पास आओ, ये प्रतिज्ञा लेके शपथ लेके मैं कहता हूं। तो अर्जुन कहता है ठीक है भगवान, लेकिन आपने तो अलग मार्ग बताया, उसका क्या, उसको छोड़ू क्या, हाँ सर्व धर्मान परित्यजम, बोला पाप लगेगा डरो मत, मां सुच सर्व धर्मान परित्यजम माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापे भ्यो, अर्जुन कहता है सब मार्ग छोड़ने के बाद मुझे पाप लगेगा, डरो मत अहम तुम सर्व पापेभ्यो, मैं सभी प्रकार के पाप से आपको मुक्त कर दूंगा, मां सुचे, डरने की बात नहीं है। तो कंक्लूजन में भगवान कहते हैं ये दो श्लोक, ओवरव्यू में हमने देखा कि तीन प्रकार का ज्ञान है, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतमम ज्ञान। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है गुह्यतमम भक्ति। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है तो अलग अलग प्रकार का ज्ञान क्यों दे रहे, अधिकार के अनुसार। तो कर्माधिकार, ज्ञानाधिकार, भक्ति अधिकार, इसमें भी भक्ति अधिकार सर्वश्रेष्ठ क्यों, क्यों थ्री इन वन, एक करेंगे तो तीनों मिल जाएंगे। और कंक्लूजन में भगवान क्या बता रहे, इसलिए आपको अर्जुन भक्ति करना है। इसलिए गीता का निष्कर्ष क्या है, अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता को पढ़ता है तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष एक ही निकलता है, हमें भगवान की शरणागति लेनी है। और जो व्यक्ति शरणागति लेता है, इसलिए एक कंक्लूजन भगवान ने दिया सर्वधर्मान परित्यजम, और एक कंक्लूजन संजय दे रहे हैं जो भगवद गीता को धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। जिस धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुष्वा मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजया, हे संजय मुझे बताओ कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो एकत्रित हुए युद्ध करने की इच्छा से वो क्या कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे कौन जीतेगा, मैच कौन जीतेगा, मैच के पहले ही कौन जीतेगा। तो यहां पे एक कंक्लूजन कृष्ण दे रहे, जिसने मेरी शरणागति ली है विजय निश्चित उसका है। और दूसरा कंक्लूजन संजय दे रहे, बोल रहे यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। संजय दूसरा कंक्लूजन दे रहे, भगवान ने दिया है फिर भी संजय उसके ऊपर सिक्का माल रहे, हां सही है, जो व्यक्ति भगवान की शरणागति लेगा विजय उसका निश्चित है। इस श्लोक के द्वारा संजय बता रहे, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहां पे सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ, सभी जो मिस्टिकता है इस जगत में, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये भगवान है। ऐसे भगवान यत्र पार्थ धनुर्धर, उस धनुर्धर अर्जुन के साथ है। धनुर्धर अर्जुन मतलब क्या, आलसी अर्जुन नहीं, जो अर्जुन बोला ना मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस अर्जुन के साथ नहीं। तो धनुर्धर अर्जुन मतलब जो अर्जुन बोल रहा है, नष्टा मोहन स्मृतिर लब्धा त्वत प्रसादात्मे अच्युता, हे कृष्ण मेरे सभी संदेह नष्ट हो चुके, मैं अभी कर्तव्य करने के लिए तैयार हूं। तो जहां पे कृष्ण है और जहां पे कर्तव्य निष्ठ अर्जुन है, संजय यहां पे कंक्लूजन में बता रहे, निष्कर्ष में बता रहे, उसके पास क्या है, श्री है, श्री यानी उसके पास सभी ऐश्वर्य रहेंगे, विजय है उसके पास, उसका विजय निश्चित है, भूति, भूति यानी ऐसा कहे असामान्य सामर्थ्य उसके पास आएगा, नीति सभी प्रकार की नैतिकता इसमें आएंगी, मतिर मम, संजय बोलते हैं मेरा मत है, युद्ध होने से पहले ही संजय युद्ध का निकाल दे रहा है। क्यों, जिसके पास कृष्ण है उसके पास विजय निश्चित है। तो इसलिए भगवद गीता, ये भगवान ने जो गाया हुआ गीत है, जो जीव के मतलब जीव के लिए पुकार है, बिछड़े हुए जीवों को वापस लेने के लिए भगवान ने गीत गा रहे, इस गीत का ओवरव्यू से निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें भगवद गीता को अगर समझना है तो विधि क्या है, तदविधि प्रणिपात, एक तत्वदर्शी पुरुष के पास जाते हुए हमें इस विधि को समझना है। और इस विधि के तीन प्रकार, मतलब इस गीता में तीन प्रकार ज्ञान है, इसमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है भक्ति का ज्ञान, और जो कोनी व्यक्ति जिसके पास श्रद्धा है वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है। श्रद्धा है तो करो, श्रद्धा नहीं है तो फिर भी यहां पर आओ, श्रद्धा बना दिया जाएगी, श्रद्धा मिलेगी, और हमें मुख्य रूप से भगवान की शरणागति लेनी है। तो इस प्रकार से ये ओवरव्यू हमें एक ही तरफ लेके जाता है, वो है भगवान की भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और हमें गीता का निष्कर्ष भी यही निकलता है कि भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ये तो मैंने एक छिलके के रूप में बताया है, आमरस तो पूरा भगवद गीता आमरस है, तो छिलका में अगर इतनी बात बताते हैं, इतनी बात है तो फिर आमरस क्या होगा। इसलिए अगर आमरस आपको चखना है तो इसके बाद में आपको कुछ यहाँ पे आपको कुछ ये मिलेगा, जानकारी मिलेगी आपको, एक मैसेज मिलेगा, आप अगर आपको अगर इस आमरस को चखना है, गीता का पूरा ज्ञान लेना है, तो मैंने सिर्फ एक छिलके के मात्रा से मैंने कुछ बताया ओवरव्यू के माध्यम से, लेकिन पूरा अगर आमरस को चखना है, गीता के ज्ञान को चखना है, तो आप इस मैसेज को पढ़िए, आप वहां पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको श्लोक टू श्लोक, अध्याय टू अध्याय आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। तो हो सके उतना मैंने इसको सिंपल करके बताया है, क्योंकि मुझे आमरस खाने की आदत है, छिलका नहीं, फिर भी मैंने छिलके को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो जितना हद तक आपको समझ में आया है, मुझे पता नहीं कितना हद तक आपको समझ में आया है, तो जितना आया है इसको आपके जीवन में पालन कीजिए, और नहीं आया है तो भगवान के इस दिव्य ज्ञान को समझने से निश्चित रूप से श्रद्धा में बढ़ोतरी निश्चित रूप से हो सकती है। तो हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय।